हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 71। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुया दपि यो नर सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुया दपि यो नर सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अति यानी सुंदर श्लोक है। कृपया शब्दों का अर्थ देखिए। भगवान कहते हैं श्रद्धावान यानी श्रद्धालु, अनसूया यानी द्वेष रहित, च तथा शृणुयात सुनता है, अपि निश्चय ही यह जो नर मनुष्य स अपि वह भी मुक्त मुक्त होकर शुभान लोकान शुभ लोकों को प्राप्नुयात यानी प्राप्त करता है पुण्य कर्मणा पुण्य आत्माओं का। अनुवाद, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। कृपया इन पवित्र शब्दों को समझने के लिए गुरु अगरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व परान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथ वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता मात की जय हो। कंद्रा श्रीमद्भगवद गीता मात की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अपने इस पवित्र गोपनीय वचनों को समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण ने 67 में कहा, इदम् दीना तपस्कायना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचम न च माम यो बसूयते। यानी जो ये गुह्य ज्ञान उनको कभी नहीं बताना चाहिए, जो संयमी नहीं है, जो एकनिष्ठ नहीं है और जो मुझसे द्वेष रखते हैं, भक्ति नहीं करते, उन्हें नहीं बताना चाहिए। और आगे भगवान ने कहा, यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यते भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भूहि। इस संसार में उसकी उपेक्षा न कोई अन्य सेवक मुझे अधिक प्रिय है और न ही कोई होगा। इतना बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो इस शास्त्र को अध्ययन करता है, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। ऐसे देखो जैसे हम ऐसे पढ़े ना, बार बार पढ़े और हमें समझ में आए, इस तरह अध्ययन करता है यानी पाठ करता है, उसे समझ बार बार रीड करता है, पढ़ता है। अध्येष्यते च इमं धर्मं सम्यादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्ट स्यामिति मे मति। और भगवान कहते हैं, मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो भगवान के शब्दों को पढ़ता है वो अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करता है। आज भगवान श्री कृष्ण श्रवण की जो श्रवण का महत्व है, शास्त्र को, इस श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने का जो महत्व है उसके विषय में बता रहे। भगवान कहते हैं, श्रद्धावानन सूयश्च। श्रवण करने से पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी भगवान के प्रति ये और कोई श्रद्धा ही नहीं है, अब जब जो बोल रहा है उसके प्रति आपकी कोई श्रद्धा नहीं है तो डेफिनेटली जो बोला है उसके प्रति क्या श्रद्धा हो सकती है? जो आपके सामने खड़ा है उसको ही आप है ना भगवान ही नहीं समझ रहे हो, उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। अब मेरे जैसा कोई ठग चोर खड़ा हो के आपको बोल रहा है, आप मेरी तरफ आपकी कोई श्रद्धा नहीं है तो मेरे वचनों की और क्या श्रद्धा होगी आपकी? लेकिन भगवान कहते हैं श्रद्धावान, एक तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, मेरे विषय में वास्तविक तौर पे समझना चाहते हो, तो आपके अंदर पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब आप श्रद्धा रखोगे तो मैं आपको अपना ज्ञान, वरना श्रवण करने से खाली श्रवण करने से कभी भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वरना तो भगवान कह देते थे कि भाई जो सुनेगा उसको, यहाँ पर भगवान ने कहा है शरण याद यो नरा, जो सुनता है वो भी सोपी मुक्त शुभान लोकान, वो भी शुभ लोकों की ओर जाता है। लेकिन खाली सुनने की बात नहीं की, एक तो श्रद्धा से सुनना है, क्योंकि भगवान पहले कह चुके 4.14 में अश्रद्धदानश्च अज्ञस्य अश्रद्धदानस्य संशय आत्मा विनश्यति, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, संशय है, उसका तो ना इस संसार में, इस लोक में कल्याण होने वाला है और ना ही अगले लोक में उसे सुख मिलेगा। फिर यहाँ भगवान कैसे कह सकते हैं सो भी मुक्त शुभान लोकान, अगर श्रद्धा नहीं है फिर भले कितना ही सुन लो, अगर श्रद्धा नहीं है तो भले कितना ही तुम्हें ज्ञान हो जाए प्राप्त, लेकिन यदि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि भगवान ने कि पहले कह दिया ना कि ना यम लोको नास्ति न पढ़ो न सुखम संशय आत्मा, ना इस लोक में उसको सुख मिलता है और ना ही अगले जीवन में उसको कभी सुख प्राप्त हो सकता है, किसको, जिसको श्रद्धा नहीं है। और 9.3 में तो भगवान श्री कृष्ण ने ये तक कह दिया अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, हे परंतप जो इस भक्ति योग के प्रति श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर पुनर्बारंबार आते रहते हैं। अब जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसके लिए भगवान ने पहले ही बोल दिया कि वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर तो लिखा है जो सुनता है तेपी शुभान लोकान, वो शुभ लोकों में जाता है जहां पर महात्मा होते हैं। तो सुने भले कितना भी लेकिन सबसे पहले उनके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो श्रद्धा और दूसरा अनसूयश्च। अनसूयश्च का मतलब द्वेष नहीं, भगवान के प्रति कोई भी जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए ना भगवान के प्रति और ना ही किसी और जीव के प्रति, द्वेष रहित होकर भगवान के इस पवित्र शब्दों को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया जो ईर्ष्यालु हैं उनको तो सुनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो किसी तरह से आके सुन लेते हैं तो भी उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सुनने का जो रिजल्ट है वो तब मिलेगा जब आपके अंदर, देखो यहाँ पर भी भगवान ने ये नहीं कहा कि उसको कितना समझ में आता है, बस आप श्रद्धा से ले, श्रद्धा और ईर्ष्या भाव से द्वेष भाव से दूर रहकर यदि आप श्रवण करते हो, फिर आगे भगवान की ड्यूटी है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आप श्रद्धा रख के ज्ञान श्रवण कर रहे हो तो आगे ये आपकी, आपको सिर्फ यही करना है, आपका हेडेक इतना है कि आप अपने श्रद्धा रखो, सिंसियर होके भगवान के विषय में सुनने की इच्छा प्रकट करो और भगवान खुद ही आगे का हम भगवान करेंगे, इवन वहां तक आपको पहुंचाएंगे भी खुद और जो सुनाया जा रहा है उसको समझाएंगे भी खुद ही। आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटी क्या है, श्रद्धा और विश्वास के साथ द्वेष भाव से रहित होकर केवल श्रवण करना है, और श्रवण करने के बाद क्या होगा सोपी मुक्त शुवान लोकान, वो जो है वो अच्छे, वो नर जो है, वो व्यक्ति है, वो शुभ लोकों की ओर जाएगा, कहां पर, जहां पर प्राप्नुयात पुण्य कर्मणा, जो बहुत बहुत पुण्य कर्म करते हैं, जो तपस्याएं करते हैं, जिस लोक में जाते हैं वही लोक उन्हें प्राप्त होता है जो श्रद्धा से खाली इस श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करता है। बहुत बहुत महिमा है श्रवण करने की। कहते हैं जहाँ पर भगवत गीता समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है, और श्रीमद् भागवतम में केंद्र 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 8 में कहा गया धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत् यदि रतिम शम एव हि केवलम, यानी कि चाहे कोई किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, और वो धर्म सुनिश्चित स्वनिष्ठित बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करता है, लेकिन विश्वसेनो कथा सुया, लेकिन भगवान की कथा में नोत्पाद ये यदि रतिम, रति उत्पन्न नहीं होती है, श्रम एव ही केवलम, वो केवल गधे और बैल की तरह कार्य कर रहा है, अगर वो अपना कार्य अच्छे से कर रहा है लेकिन भगवान की कथा में उसकी कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो समझो उसने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया, सत्यानाश कर दिया अपने जीवन का, सिर्फ गधों की तरह श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही किया उसने, क्योंकि भगवान की कथा तो श्रवण ही नहीं की। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी इस कथा को श्रवण करता है वो अच्छे लोगों को प्राप्त करता है। इसलिए आगे कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 14 में वेद व्यास जी हमें सलाह देते हैं, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देयः पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्यों को एकाग्र चित्त से उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण गुणांगान स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। सदैव भगवान के विषय में सुनना, वास्तव में श्रवण करना जो है ना वो प्रथम भक्ति है। हमारा भगवान के साथ मिलन होता है जब हम श्रवण करते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे उत्तम साधन है श्रवण करना। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सिर्फ श्रवण करके भगवान के प्रति प्रेम को आकर्षित, अपने प्रेम का निर्माण कर सके हैं। क्या जैसे रुक्मिणी महारानी जो थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में सुना था, भगवान को लेटर लिखा, उन्होंने बोला मैंने आपको देखा नहीं है, खाली मैं आपके बारे में सुनकर आपके प्रति इतनी आकर्षित हो गई हूँ कि अब मैं आपके अतिरिक्त और किसी को अपना नहीं सकती, केवल मैं आपकी हूँ और आपकी रहूंगी, अन्यथा मैं भले प्राण दे दूंगी लेकिन और किसी की नहीं बनूंगी। उसी तरह प्रहलाद ने माँ के गर्भ में केवल भगवान के विषय में सुना और भगवान के होकर रह गए। तो भगवान के विषय में सुनना बहुत अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जितना हम इजीली भगवान को श्रवण करके समझ सकते हैं उतना तो भगवान को। अब देखिए, रुक्मिणी महारानी ने भगवान को नहीं देखा था लेकिन भगवान के प्रति अपना इतना आकर्षण निर्माण कर पाई। वही दुर्योधन है, भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। कंस ने, हिरण्यकश्यपु ने भगवान को समक्ष देखा था लेकिन भगवान के महिमा को नहीं जान सके। तो वास्तव में जब हम स्वयं भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो फिर हम भगवान को नहीं समझ सकते, बल्कि भगवान हमारे सामने भी प्रकट हो जाए ना तो भी हम उन्हें नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो उसकी महिमा इतनी है कि वो भगवान को इतना क्लियर हमारे सामने प्रकट कर देते हैं कि वो हम भगवान को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान को जानते हैं, वो उसी तरह से हमें बताते हैं जिस तरह से भगवान रियल में है, क्योंकि हमारे आंखों पर प्रेम का अंजन नहीं लगा हुआ है, हमारी आंखों में माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। तो भगवान भले सामने भी आ जाए तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब शुद्ध भक्त कानों के रास्ते से हमारे आंखों में प्रेम का, हमारे हृदय में, हाँ हृदय के नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय के विलोक पर क्या करते हैं, प्रेम का अंजन लगाते हैं। और फिर जब वो कानों के जरिए से कथा कर रहा हमारे हृदय तक जाता है तो हम भगवान को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, भगवान के वाक्य को समझ पाते हैं, भगवान की इच्छा को समझ पाते हैं। तो प्रथम भक्ति जो है वो श्रवण है, श्रवण करना अनिवार्य है। जब हम श्रवण करते हैं तभी हम भगवान के वास्तविक रूप को, वास्तविक पर्पस को, वास्तविक लीला को वास्तविकता के साथ समझ सकते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति ही हमें, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा भक्त्या माम अभिजानन्ति, अब जो भक्त होगा वो हमें भगवान के विषय में जैसा बताएगा एज इट इज हम समझेंगे तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न समझाई जाए। भगवान ने क्या कहा था, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचम् न च माम योभ्यसूयति, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अभ्यसूयते का मतलब होता है ईर्ष्या करने, और यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, अनसूयते, कि वो ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी याद कराते हैं कि भगवान ने पहले ही बोल दिया, जो उनसे द्वेष करते हैं उनको कभी नहीं बताना चाहिए। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों को के भक्त होने की उपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा में क्यों चलाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखो कैसा अच्छा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान ने बोल दिया है कि आपको ऐसे लोग को ना बताना, नहीं बताना, भगवान का आदेश है कि ये वाला मेरा जो ज्ञान है वो कभी भी इदम देना तपस काय ना भक्ता है कदाचन न चा शिष्य श्रवे वाचम न च माम सभ्य सूयते, कि उन लोगों को नहीं बताना है जो मेरे भक्त नहीं। लेकिन जब प्यास होती है तो कितने सारे लोग होते हैं, अब जाहिर सी बात है सारे भक्त तो नहीं होते, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं अभक्त होते हैं, तपस्या भी नहीं करते हैं, तो फिर उनको क्यों बताएं, ऐसी खुली कक्षा क्यों चलाते, यानी कि इतना कॉमनली क्लास क्यों चला रहे हैं भगवद गीता की जिसमें कोई भी आ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता है, भले उस क्लास में सारे लोग भक्त नहीं होते हैं, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा होती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुन लेते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। बहुत सुंदर श्री पापा जी बोले कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भले कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं लेकिन ईर्ष्या नहीं करते, भगवान से द्वेष नहीं करते हैं, तो वो सुनते सुनते श्रद्धा उनकी डेवलप होती है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है उसका सिर्फ वाइब्रेशन जो उनसे निकलता है ना उनके सुनने के टाइम पर, क्योंकि शुद्ध भक्त में इतना पावर होता है। इसे कहते हैं गंगारा परश हो ये पश्चाति पावन दर्शन पवित्र करो तुम्हारा गुण। यदि हम गंगा का स्पर्श करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो जाके कहीं फिर कहीं जाकर कोई पवित्र होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उसके तो केवल दर्शन मात्र से, इसे कहते हैं एक घड़ी आधी का भी आद संत जना की गोष्ठी कटे कोट अपराध, सिर्फ उनके आधी के भी आधी घड़ी तक अगर हम उनके शब्दों को श्रवण कर देते हैं तो भी हमारे करोड़ों करोड़ों अपराध जिनके कारण हम भगवान के प्रति अपना आकर्षण निर्माण नहीं कर पा रहे हो रहे होते हैं, वो सारे अपराध स्वयं उसी टाइम पर क्षय हो जाते हैं जब हम एक घड़ी के लिए या आधी से भी आधी घड़ी के लिए किसी शुद्ध भक्त का सत्संग श्रवण करते हैं। और जब हमारे अपराध क्षय हो जाते हैं तो भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान की लीला के प्रति, उनको श्रवण करने के प्रति हमारा आकर्षण निर्माण होता है। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अतएव श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों के फल प्राप्त हो जाते हैं जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता, यानी कि वो खुद से नहीं कर रहा होता है प्रयत्न, लेकिन क्यों, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्त का संगति कर दिया। शुद्ध भक्त का संग थोड़ी देर के लिए भी यदि करते हैं तो उससे हमारे करोड़ करोड़ जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हैं और हम शुद्ध भक्त बनने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा हो जाती है। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। ये भगवान, भले भगवान ने कह दिया कि मत सुनाओ, लेकिन ये भगवत भक्त इतने करुणामयी होते हैं, भगवान से भी ज्यादा करुणा होती है भगवान के भक्तों में। भगवान ने बोल दिया कि मत सुनाओ, लेकिन फिर भी वो क्लासेस में सब एक हर एक को ये वाली सब भगवान की बातें बताते, ताकि ये सुनने के बाद उनके हृदय में ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी और श्रद्धा उत्पन्न होगी, इंक्रीज होगी। पहले भगवान के पवित्र नाम से उनका हृदय, देखो कहीं पर भी क्लास होती है तो डायरेक्ट से भगवत गीता ने पहले भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन कराया जाता है। कीर्तन कराते 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 जब उनके हृदय की गंदगी साफ हो जाती है, फिर भक्त क्या करता है, उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता उंडेल देता है, उसको बता देता है कि देखो ये कृष्ण है और आप उसके दास हो। जब उसको, क्योंकि जब पहले भगवान के नाम अमृत से अपने हृदय की गंदगी को साफ कर देते हैं, फिर ये भगवान का पवित्र जो ये संवाद है, भगवान के जो वाक्य हैं, उसको सुना नहीं, क्योंकि उसके अपराध नष्ट हो गए। हमेशा यही होता है, पहले क्लास के पहले कीर्तन होता है और कीर्तन करते ही देखो श्रील प्रभुपाद ने कितनी अच्छी विधि रखी कि पहले हृदय को साफ करते हैं, उसके अंदर जो भी अब तक कीर्तन से क्या होता है, देखो भगवान की सारी चीजें जो भगवान ने कहा ना, नहीं बताना, किसको नहीं बताना, इदम तेना तपस्काया। अब जो बंदा घर से आया है, यहाँ पर बैठ के एक घंटा कीर्तन किया, उसने तपस्या कर दी, ठीक है। कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, ठीक है। उसके बाद इदम तेना तपस्काया ना भक्ताय कदाचन, जो भक्ति नहीं करता। लेकिन इस कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति करौतत हरि कीर्तना, भगवान के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, तो उसने भक्ति भी कर दी। नचा शुश्रूषवे, जो सुनना नहीं चाहता है या जो श्रवण करना नहीं चाहता, सेवा नहीं करना चाहता, तो जब हम कीर्तन करते तो साथ में हम श्रवण कर रहे होते हैं और श्रवण करना ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, तो साथ में श्रवण भी हो गया, सेवा भी हो गई। और नचमाम योभ्य सूयते, जिसके हृदय में गंदगी है, जो भगवान से द्वेष रखता है, तो जब वो कीर्तन करता है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो क्या होता है, उसकी सारी गंदगी खत्म हो जाती है। अब वो इस लायक हो गया, अब वो इस लायक हो जाता है कि भगवान का ये परम संदेश उसको सुनाया जाए। इसे देखो श्रील प्रभुपाद जी कितने चतुर, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, कृष्ण भक्त बोलो चतुर, वो कितने चतुर हैं। उन्होंने पहले क्लास से पहले कीर्तन का रखा था कि वो सारी भगवान ने जो जो शर्तें रखी हैं, वो सारी शर्तें पूरी हो जाएं, फिर मैं इसको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दूंगा, ताकि क्योंकि इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण मात्र से इस व्यक्ति को भी पुण्य लोक का फल मिल जाता है। जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता, उसने नहीं किया, लेकिन क्योंकि शुद्ध भक्त संसार में आ जाता है, तो जिससे भी उसकी भेंट होती है, उसका उद्धार होना निश्चित है। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बन जाए। बस ये भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो इस संसार के लोगों को पुनर्जन्म मरण के चक्कर में बारंबार दुखों भरे जीवन में आते हुए नहीं देखना चाहता है। इसीलिए वो जिससे भी मिलता है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये कृष्ण उपदेश हर किसी को बताओ, क्योंकि उसके कष्टों का निवारण करने का एकमात्र यही तरीका है। पहले उनको शुद्ध बनाओ भगवान के पवित्र नाम का, उनको रसा स्वादन करो, और उसके बाद जब उनका हृदय नर्म हो जाए तो उसके अंदर भक्ति का बीज बोलो, क्योंकि शुद्ध भक्त का यही कार्य है। और भगवान ने कहा, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रिय कृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्यत्रतरो भुवि, इस संसार में उसकी अपेक्षा ना कोई मुझे अत्यंत प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा जो ये मेरा परम रहस्य मेरे भक्तों को सुनाता है। सामान्यता जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अच्छे लोग होते हैं ना, जो मुक्त आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, वो इस भगवान के संदेश को बहुत जल्दी ही एक्सेप्ट करते हैं, अत्यंत सरलता से इजीली कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत ही सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। यानी कि जो भगवान ने कहा ना, पुण्य कर्मणा, जो पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे लोकों में जाते हैं ना, जो अच्छे से लोकों में जाते हैं, तो सिर्फ श्रद्धा से सुनने वाला भी ऐसे लोकों में जाता है। तो पुण्य कर्म कौन से हैं, जैसे अश्वमेध वगैरह यज्ञ करने में करोड़ों करोड़ धन भी चाहिए होता है और समय भी चाहिए होता है, बहुत उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी होती है। लेकिन सिर्फ भगवान के विषय में श्रवण करने से हम वो लोक हासिल कर सकते हैं जो कि इन पुण्य कर्मों के जरिए से प्राप्त होता है। या वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है, जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते हैं, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा, भक्ति तो करते हैं लेकिन बिल्कुल प्योरिटी से शुद्ध अभी तक नहीं होते हैं, किंतु शुद्ध नहीं होते वो ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। भक्ति करने वाले का कभी घाटा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी भाव से की जाए। अगर वो द्वेष भाव से कर रहा है, शुद्ध भाव से नहीं भी कर रहा है, तो भी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर भी वो ध्रुव लोक में जाएगा। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। अब वो महान भक्त हैं भगवान के, और जो लोग शुद्धता से भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं लेकिन भक्ति फिर भी कर रहे हैं, तो भी वो अच्छे लोकों में ही जाएंगे, और जब वहां पर भी भगवान के भक्त की संगति करेंगे तो फिर वो फिर और भी अच्छे लोकों में जा सकेंगे, आगे आगे उन्नति करते जाएंगे। और एक दिन जो किसी भी तरीके से, किसी भी वे से यदि किसी की भेंट किसी शुद्ध भक्त के पास साथ हो जाती है, तो एक न वो शुद्ध भक्त किसी न किसी तरह से ये न के न प्रकारे उसको भगवान तक पहुंचा ही देता है। इसलिए कहते हैं हमें सदैव शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त स्वयं भगवान से जुड़े हुए होते हैं, और जो उनसे मिलता है, जो उनके सानिध्य में रहता है, वो उन्हें भी भगवान के पास पहुंचा देते हैं, भगवान के साथ उनकी मुलाकात करवा देते हैं। तो वास्तव में जो भगवान ने आज बताया है, श्रद्धावान अनसूयस्य शुण्यादपि यो नरः, जो श्रद्धा से सुन रहा है तो खाली ये नहीं देखना है कि किसी से भी सुन लो, सुनने के लिए पहले देखना है कि वो जो सुना रहा है वो पात्र क्या है। यदि वो भगवान से प्रेम नहीं करता, यदि वो भगवान का भक्त नहीं है, यदि वो शुद्ध भक्त नहीं है, तो फिर उससे नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मायावादी बात से सुन ले होए सर्वनाश। अगर कोई ऐसा श्रीमद् भगवद गीता सुना रहा है आपको जो खुद भगवान को निराकार समझ रहा है या मायावादी भाषा सुना, तो फिर हमारी जितनी भक्ति उन्नति होने वाली होगी ना, उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हमें केवल शुद्ध भक्तों से श्रीमद् भगवद गीता का और भागवतम का श्रवण करना चाहिए। अब ये यहाँ पर आपके हृदय में प्रश्न आ सकता है, फिर हम लोगों ने तो मेरे से सुना है, आप लोगों ने तो मेरे से सुना है, तो फिर आपका तो कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने आपने मेरे से नहीं सुना है, मैंने जो कुछ भी कहा वो एज इट इज श्रील प्रभुपाद के जो वचन है वो मैंने आपको बताया। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे मुझ में और मेरे शिष्यों में बहुत से अवगुण हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो क्योंकि एज इट इज है, परंपरा से आया हुआ है, उसमें तनिक भी कोई गलती नहीं है, उसको एज इट इज मैंने आप तक पहुंचाया है। तो वो समझो कि आपको श्री प्रभुपाद के वाक्य ही सुनाए गए हैं, ये तो बस जैसे श्री प्रभुपाद ने कहा है एज इट इज, ना कुछ अपने मफाद के लिए उसमें से निकाला और ना ही कुछ अपने मफाद के लिए उसमें डाला है। एज इट इज जब हम सुनते हैं तो फिर भगवान ने कहा है जो श्रद्धा से जो सुनता है सो भी मुक्त शुभान लोकान, वो शुभ लोकों को प्राप्त होता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न हर उस व्यक्ति से है जिसने श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण किया है। और भगवान कहते हैं चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 72, भगवान कहते हैं कच्चिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ति धनंजय कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ति धनंजय कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ति धनंजय कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय एक बार सिलो पढ़ो कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय शब्दों का अर्थ देखिए कच्चित क्या एतद ये श्रुतम सुनकर पार्थ हे प्रथापुत्र त्वया एकाग्र तुम्हारा मन एकाग्र एकाग्र चेतसा मन से कच्चित क्या अज्ञान अज्ञान सम्मोह मोह भ्रम प्रणष्ट दूर हो गया है ते तुम्हारा धनंजय हे संपत्ति के विजेता। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता समाप्त कर ली। भगवान ने अपने समस्त वाक्य जो अर्जुन को जो कुछ बताना था वो बता दिया। अब अर्जुन से पूछ रहे हैं अनुवाद देखिए। भगवान ने कहा हे प्रथा पुत्र हे धनंजय क्या तुमने इस यानी इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हो गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक प्रश्न पूछते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता उस समय शुरू की थी जब अर्जुन ने कहा था कि स्टार्ट में भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया था तो अर्जुन मोह में पड़ गया था और भगवान से कहा था कि ये सामने मेरे पितामह भीष्म हैं द्रोणाचार्य कदम भीष्म महान संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूर्जार्हा वरिसूदन हे शत्रु हंता हे मधुसूदन मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर प्रहार कर सकता हूँ। और तब उस हालत में अर्जुन भगवान की शरण में आया था ये कहते हुए कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यश्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधीमां त्वां प्रपन्नम अब मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भी भूल गया हूँ सारा धैर्य खो गया हूँ ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ यश्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि जो मेरे लिए बेहतर है जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो मुझे बताओ क्यों क्योंकि शिष्यस्ते हम शालिमाम त्वाम प्रपन्नम अब तक तो मैं तुम्हारा दोस्त था लेकिन अब मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ क्यों क्योंकि नहीं प्रपश्यामि मम आपनोध्यात यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस पत्नम रुद्धम राज्यम सुराणाम अपिचारिपत्यम मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अरे स्वर्ग के देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य की संपत्ति द्वारा ये अगर राज्य मुझे मिल जाए ये स्वर्ग का राज भी मुझे मिल जाए ना तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा तो ये पृथ्वी का राज जो है उसको भोग कर मुझे सुख प्राप्त होगा ये दुख मेरा दूर होगा उसकी तो कोई संभावना ही नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब भगवान क्या पूछ रहे हैं कि हे धनंजय क्या तुमने इसे जो अभी मैंने बताया एकाग्र चित्त होकर सुना। देखो कितना सुंदर भगवान पूछ रहे हैं कच्चिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम शास्त्र सुन रहे हो तो हमारा चित्त डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कुछ उस तरफ कुछ वो बारे में भी सोच रहे हैं कुछ वो बारे में भी सोच रहे हैं नहीं एकाग्र चित्त यानी कि एक ही जगह पर टिका हुआ कि कृष्ण क्या कह रहे हैं और मुझे क्या कृष्ण मेरे लिए क्या आदेश दे रहे हैं बस एक टाइम पर एक ही काम। तो भगवान कह रहे हैं कि आपने एकाग्र होकर सुना है और अब अगर तुमने सुना है तो क्या तुम्हारा अज्ञान तथा मोह नष्ट हो गए। भगवान कहते हैं कच्चिद् अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है। श्रील प्रभुपाद जी सुंदर रीति से श्लोक समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, यानी कि अब कर लिया, अभी क्योंकि अब तक गुरु की तरह उनको आदेश दे रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछे कि उसने पूरी श्रीमद् भगवद गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार है। यानी कि अगर अभी भी अर्जुन कोई एक क्वेश्चन करेगा तो भगवान वापस से उस क्वेश्चन के जवाब में बहुत कुछ बताएंगे, और भी भगवद गीता बताएंगे, और भी अपना गीत गाएंगे। लेकिन अभी तो कृष्ण ने सिर्फ ये पूछा है, क्योंकि अर्जुन जो है वो अब शिष्य की इस तरह भगवान की शरण में आया था। अब टीचर का ये, गुरु का ये कर्तव्य होता है कि एक बात समझा दे, फिर शिष्य से पूछे समझ में आ गया, एनी क्वेश्चन, और कुछ पूछना है आपसे, आपको अगर पूछना है कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। तो भगवान ये एनी क्वेश्चन वाला जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि भगवान भी पूछ रहे हैं, सबको समझ में आ गया तुम्हें जो मैंने बताया था, तुम्हारी अज्ञानता खत्म हो गई है। तो आज भी जब भी क्लास होती है तो हमसे आखिर में पूछा जाता है कि आपको समझ में आया या कोई क्वेश्चन है, तो भगवान भी पूछ रहे हैं। और अगर वो नहीं बोलेगा ना कि नहीं समझ में आया, या फिर कोई क्वेश्चन करेगा, तो फिर आगे वार्ता चलेगी। अब देखते कल अर्जुन क्या पूछता है। आज कृष्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूरी भगवद गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझ ली तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भगवद गीता को एक बार एकाग्रचित होकर सुन ले, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं रहता अज्ञानता का, क्योंकि गीता जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के वचन है। और कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। अज्ञान जो है वो माया है, अंधकार है। और याहार कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। और जहाँ एक बार कृष्ण घुस जाए, जहाँ कहीं सूर्य आ जाए, तो फिर वहां पर अंधकार का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो जहाँ पर जिसने भगवद गीता को एक बार किसी शुद्ध भक्त से सही तरह से समझ ली है, तो उसका अज्ञान, सारा अज्ञान दूर होना अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, से साक्षात भगवान ने कहा है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता की अहमियत को बता रहे हैं कि कोई साधारण शास्त्र थोड़े है कि किसी कवि ने लिखा हो, किसी उपन्यास ने लिखा हो, किसी इंसान ने लिखा हो। ये तो भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकली हुई अमृतमयी दिव्य वाणी है। ये कोई साधारण शास्त्र नहीं है, तो जिसे किसी कवि ने नहीं गाया है, इसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही भगवान के द्वारा गाया हुआ प्रिय गीत है, जो अपने भक्तों के मोह को नष्ट करने के लिए और भक्तों के साथ भगवान का संबंध फिर से निर्माण करने के लिए भगवान ने गाया है ये सुंदर गीत। तो यदि भगवान से या उनके किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से किसी को यह श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, तो उसी दिन से उसके भाग्य का जो सूर्य है वो उदय हो जाता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान के वाक्य समाप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो कुछ बताना था वो पूरा का पूरा बता दिया, और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक प्रश्न किया, क्या तुम्हें समझ में आया और तुम्हारा जो मोह है वो समाप्त हो गया है अथवा नहीं? इसका उत्तर कल अर्जुन देंगे। कृपया हमारे साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।